नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने उन्हें पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। दो दिन की इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा महासचिव BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। टोरंटो में अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शोपानियों के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद में भाग लेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। इसमें शिक्षण संस्थानों में खेलों को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने और युवाओं में खेल प्रतिभाओं को निखारने पर बल दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुरुडकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान SLR, राइफल, बीजल लॉन्चर और थूथन लोडिंग बंदूकों सहित 23 हथियार बरामद किए गए। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।